सांख मत की कुछ मतों को अनेक विद्वानों में अंश रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें कुछ सत कार्यों का भी निरूपण किया गया है, परंतु परमाणुवाद के वेद विरुद्ध होने के कारण किसी भी सत्पुरुष ने उसे मान्यता नहीं दी है। इस कारण भी परमाणुवाद की निरर्थकता सिद्ध होती है। अब बोध मत का निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं। बोध मत के चार प्रकार के अनुयायी हैं, वैभाषिक, स्वतंत्रक, योगाचार, माध्यमिक। उनमें वैभाषिक मानते हैं कि समस्त बाह्य वस्तु मात्र ही प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रक बुद्धि वचित्र से वस्तु मात्र का अनुमेतव स्वीकार करते हैं। योगाचार का मत है कि वस्तु भाव असत है, एकमात्र विज्ञान ही सत्य है, बाह्य पदार्थ मिथ्या है। और माध्यमिक मानते हैं कि समस्त शून्य ही है। बोध मत वाले इन चारों को मिलाकर भावना चतुष्टय कहते हैं। रूप ज्ञान, वेदना, पीड़ा, संज्ञा, नाम और संस्कार दुख मानते हैं। बोध को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो प्रकार का है, आले, एक रस और प्रवृत्ति काट पट आदि। आले को आत्मा अथवा चित भी कहा है। विषय के साथ इंद्रियों की संगति से जिन नाम रूपों का बोध होता है वह संज्ञा स्कंद है। राग द्वेष मोह मद मत्सर्ज आविर्भा धर्म धर्म आदि संस्कार स्कंद है। भूत भौतिक तथा चित और चैत की संगति से संसार यात्रा का निर्वाह होता है। जैसा व्यवहारों के आश्रय रूप होकर अंतःकरण में निवास करते हैं, जय अंतर में स्थित समुदाय ही चतुष्क स्कंद है। इन दोनों समुदायों के भिन्न आकाश आत्मा आदि किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। इन दोनों समुदायों से ही जगत के सब व्यवहारों का निर्वाह हो जाता है। यदि इस पर विवेचन करें तो बुद्धों के इस जगतात्म समुदाय की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समुदाय की सभी वस्तुओं अचेतन एवं परस्पर अपेक्षा से रहत है। इस प्रकार उनके द्वारा संघात नहीं बन सकता। परमाणु आदि को बुद्धों ने ही खंड बताया है। तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली वस्तु के संगठित होने से भी संघात की सिद्धि नहीं होती। इसलिए बुद्धों की कल्पना भी युक्ति संगत नहीं है। पूर्व पदार्थ से अगले पदार्थ की उत्पत्ति होती है। बोधों के अनुसार क्षणिक वस्तुओं में नित्य अर्थात नष्ट न होने का भाव ही अविद्या कहा गया है। यह विद्या ही राग आदि संस्कार उत्पन्न करती है। संस्कार से गर्भ में स्थित शिशु में आदि संस्कार उत्पन्न करती है। संस्कार से गर्भ में स्थित शिशु में आलय नामक विज्ञान उत्पन्न होता है। आलय से शरीर समुदाय के कारण भूत पृथ्वी आदि चार भूत होते हैं। उन चार भूत नाम रूप शरीर विज्ञान और धातु को आश्रय में रखने वाली छह इंद्रियां का समूह खड़ायतन कहा जाता है। नाम रूप इंद्रिय आदि के स्वंद को स्पर्श कहकर उससे सुखादि की वेदना की उत्पत्ति कही है। वेदना से तृष्णा उपादान भाव जाति वृद्धावस्था मृत्यु शोक परिवेदना दुर्मनस्ता आदि का उत्पन्न होना कहा गया है। इसके बाद फिर अविद्या आदि के क्रम से सब आविर्भूत होता रहता है। ये चक्र निरंतर घूमता रहता है। ऐसे समुदाय सिद्धि की बात कहना नितांत प्रामूलक है। क्षणों को स्थिर मानने वाली युक्ति ठीक नहीं हो सकती। अविद्या और उससे उत्पन्न राग की उत्पत्ति से संघात पूर्व सृष्टि की कल्पना कदाप सिद्ध नहीं होती। घटपट आदि कार्यों में उनके कारण का विद्यमान रहना प्रत्यक्ष देखा जाता है। कार्य में कारण के विद्यमान रहने को ही सभी पदार्थों को क्षणक मानते हैं। इससे कार्य में कारण का विद्यमान रहना नहीं बनता, परंतु कारण के क्षणक होने से कार्य की उत्पत्ति के साथ ही कारण का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार कार्य कारण भाव की सिद्धि न होने से भी संघात द्वारा जग की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। बोध मात्र में विज्ञान की चार प्रकार से उत्पत्ति मानी गई है। इन चारों के परते युगत नाम अधिपति सहकारी समांतर बाची माने गए हैं। समांतर और अलंबन यह चारों कर्मशा इंद्रिय प्रकाश मनोयोग और विषय बाची माने गए हैं। इन चारों की संगति से ही विज्ञान उत्पन्न होना कहा है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होना स्वीकार करने से स्कंद रूप कारण से समुदाय की उत्पत्ति होना स्वीकार करने से स्कंद रूप कारण से समुदाय की उत्पत्ति होने वाली प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है। यदि ऐसा नहीं माने तो कारण और कार्य दोनों की उपलब्धि एक समय में ही माननी होगी। इस प्रकार बौद्ध मत किसी प्रकार भी ग्रहण करना योग्य नहीं। भावों के बुद्धिपूर्वक नष्ट होने को प्रति संख्या निरोध और उनके विपरीत लक्षण को अप्रति संख्या निरोध कहा है। अवारण का अभाव मात्र ही आकाश है। इस प्रकार यह तीनों ही रूप रहत और कारण अपरोक्त दोनों निरोध संभव नहीं। अवस्था के अंतर का आश्रय ही सत वस्तु की उत्पत्ति और विनाश रूप है। सब पदार्थ प्रतिशण नाशवान है और असत कारण से सत की उत्पत्ति भी प्रतिशण होती है। इस प्रकार विनाश और उत्पत्ति का क्रम निरंतर चलते रहने से किसी भी निरोध की सिद्धि नहीं होगी। फिर सत सत वस्तु का शून्य रूप से होना विनाश कहा जाए तो प्रत्येक क्षण संसार शून्य ही दिखाई दे, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए बौद्ध मत की उपाध्यता स्वीकारता सिद्ध नहीं होती। बौद्ध मत वालों से संसार के कारण रूप अविद्या आदि के निरोध को मोक्ष मना है, इससे दो शंकाएं उपस्थित होती है। यह मोक्ष तत्व ज्ञान से होता है अथवा स्वयं ही हो जाता है? तत्व ज्ञान से होने से मोक्ष होना इसलिए संभव नहीं है कि ऐसा होने पर बिना कारण विनाश अर्थात पदार्थों का अभाव मानना होगा। इससे अप्रति संख्या निरोध नहीं मानना जा सकेगा। यदि स्वयं ही मोक्ष साधन का उपदेश निरर्थक हो, स्वयं ही मोक्ष साधन का मोक्ष माना जाए तो भी संगति नहीं बैठती, क्योंकि स्वयं मोक्ष मानने से साधन का उपदेश निरर्थक हो जाएगा। अतः दोनों प्रकार से ही बोधों का मत सिद्ध नहीं होता। आकाश में शून्यता का प्रतिपादन अवशेष के कारण संभव नहीं। आकाश में पक्षी उड़ा इस प्रतीति के कारण भी आकाश की सिद्धि नहीं होती। कोई भी भाव पदार्थ भाव से कैसे उड़ेगा? फिर पृथ्वी आदि की पंक्ति आकाश में भी भाव रूप दिखाई देने से और पृथ्वी के गंध आदि गुणों के समान आकाश में शब्द गुण रहने से वायु को आकाश का संश्रय नहीं कह सकते। आकाश को यदि आवरण सहित मान ले तो वह पृथ्वी आदि का आवरण हो सकता, और इस प्रकार संसार में आकाश की सत्ता ही नहीं रहती, परंतु आत्मन आकाश संभूता से आकाश की सत्ता अस्वीकार नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्ध है कि आकाश भाव रूप नहीं है। पहले किए हुए कार्यों का याद होना अनुस्मृति अनुभव करने वाला आत्मनित होगा, तभी उसे अनुस्मृति होगी। यदि आत्मा को खणक माने तो वह यह भी मानना होगा कि उसे पुरानी बातें याद नहीं रह सकती, क्योंकि खणक का अस्तित्व एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। परंतु अनुस्मृति का अनुभव सभी पुरुष करते हैं, इसलिए आत्मा का अविनाशी होना सिद्ध होता है। इस प्रकार बौद्धों का मत उपादेय नहीं। असत पदार्थ से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे आकाश में नीलापन नहीं होता, फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि आकाश नीला है। आकाश के पुष्प नहीं होते, परंतु आकाश पुष्प वाणी द्वारा कहे जाते हैं। इसी प्रकार पीला वस्त्र जला दिया जाए तो उसका पीला रंग भी नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट हो जाए वह असत है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष पदार्थ को सत कहते हैं। मिट्टी लोह आदि सत पदार्थ होने से उनके द्वारा काट औजार आदि की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इस मिट्टी में लोह आदि सत्ता नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदल जाता है। अतः बौद्ध मत की अनुपदेयता सिद्ध है। यदि यह मान ले कि किसी कार्य की उत्पत्ति उत्पत्ति में चेतन कर्ता की आवश्यकता नहीं है अथवा बिना कर्ता के ही कर्म स्वयं उत्पन्न हो जाता है, तो जो व्यक्ति कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा नहीं करते उसका कार्य भी स्वयं बन जाएगा, अथवा जो व्यक्ति कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं वे यह समझ करके कर्म स्वयं ही हो जाएगा प्रयत्न करना छोड़ देंगे। इस प्रकार निष्कृतव का दोष उपस्थित होगा और पूरी तरह होगा और स्वयं कार्य होता तो देखा भी नहीं जाता। ऐसे बोध मत की निरर्थकता पूरी तरह सिद्ध होती है। परंतु जो उपलब्धि ही हो तो बाह्य पदार्थ का अभाव नहीं मान सकते, क्योंकि बंध्या के पुत्र नहीं होता, इसीलिए यह बंध्या पुत्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। खरगोश के सिंह होते नहीं तो दिखाई कहां से पड़ेंगे। इस प्रकार विज्ञानवादी बोधों का योगाचार मत जिसमें प्रतीत होने वाले बाह्य पदार्थ का अभाव माना जाता निरर्थक है। स्वप्न में दिखाई देने प्राप्त होने और अनुभव में आने वाले पदार्थ एवं दृश्य जागने पर प्राप्त नहीं होते। इसके विपरीत जागृत अवस्था के सभी समान पास रहते हैं। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं के पदार्थ परस्पर विपरीत धर्म के हैं, इसलिए उपलब्धि मात्र से पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध न होने की बात निरर्थक है। उपलब्ध वस्तु के संस्कार ही वासना के रूप में प्रकट होते हैं। पदार्थों का अस्तित्व न मानने पर उनकी उपलब्धि नहीं होती और इस प्रकार वासना का सत्य भी सिद्ध न होगा। ऐसे विज्ञान का मत निरर्थक सिद्ध होता है। उपलब्ध वस्तु से संस्कारत बुद्धि ही वासना का आधार है, उसे बोध मत वाले खंड कहते हैं। यदि उनका कहना ठीक माने तो बुद्धि के अस्त्र होने से वासना का आधार खंड पर में नष्ट हो जाएगा और वासना भी अस्तित्वहीन हो जाएगी। इससे सिद्ध हुआ कि बोध मत उपाधि नहीं। बौद्ध मत वालों की सब बातों में असंगति ही दिखाई देती है। भाव और अभाव यह दोनों अवस्थाएं सत वस्तु की हैं। यदि सब को शून्य कहें तो उसका अर्थ सब को सत कहना ही होगा। फिर जिस प्रमाण से शून्यत्व सिद्ध करते हैं वह भी शून्य सिद्ध होने से शून्यवाद की ही हानि होगी। इस प्रकार बोधों का शून्यवाद निरर्थक है। अब जैन मत की मान्यताओं का निराकरण उपस्थित होता है। जैन मत के पदार्थ के दो भेद हैं, जीव और अजीव। जीव को लक्षण कहे। जीव को चेतन देह परिमाणक और अवैध सहित कहा है तथा जीव के पांच लक्षण कहे धर्म अधर्म पुद्गल काल और आकाश गति हेतु को धर्म और स्थित हेतु से धर्म मानना है। यह धर्म व्यापक है। वर्ण गंध रस और स्पर्श पुद्गल है जो कि परमाणु रूप और उसके संघात रूप होने से दो प्रकार का कहा है वायु अग्नि जल पृथ्वी तनु और तनु और भुवन आदि को संघात कहते हैं। पृथ्वी आदि के कारण भूत परमाणु एक प्रकार के हैं। पृथ्वी प्रवृत्ति विशेष है। निखल विषव द्रवात्मक है। उनमें अणुओं से पृथक अस्थिकाएं कहलाते हैं। उसके द्वारा मोक्ष के लिए ऊपर युक्त सात पदार्थों का वर्णन मिलता है और सप्तभंगी न्याय की मान्यता की गई है जो इस प्रकार है। पदार्थ की सत्ता का होना। दूसरा प्रकार अंतर से पदार्थ सत्ता का ना होना। तीसरा पदार्थ की सत्ता का होना या ना होना। वस्तु स्वरूप का वर्णन के योग होना या ना होना। वस्तु की सत्ता का होना परंतु वर्णन योग न होना। वस्तु की सत्ता का ना भी होना और उसका वर्णन योग भी ना होना। वस्तु की सत्ता होना ना भी होना अथवा उसका वर्णन योग भी ना होना। इससे सभी पदार्थों में इसके द्वारा विकल्प होना सिद्ध होता है। सत पदार्थ में प्रकार भेद तो संभव है परंतु उसमें विरोधी धर्म का होना संभव नहीं है। जिस वस्तु का भाव है वह विद्यमान नहीं से होती है अथवा जो वस्तु है उसके भाव का प्रश्न ही कैसा। इसमें जैन मत वालों की अस्थिर बुद्धि का ज्ञान हो जाता है जिससे उनके मत की निरर्थकता सिद्ध होती है। आत्मा को अपरिपूर्ण कहना अथवा देह के समान प्रमाण बड़ा बताना की युक्ति संगत नहीं। यदि आत्मा मनुष्य देह के माप वाला हो तो कभी चींटी का देह प्राप्त करने पर उसमें कैसे प्रवेश करेगा। यदि एक ही माप वाला है तो क्या बालक के देह में रहने पर छोटा और युवा होने में बड़ा हो जाता है। जब किसी के रहने पर छोटा युवा होने में बड़ा हो जाता। जब किसी के शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उससे आत्मा कट जाता है। क्या इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को एक देशी अथवा देहाकार मानने की युक्ति निरर्थक और अव्यवहारक है। यदि यह मान ले कि आत्मा शरीर के परिणाम अनुसार कटता बढ़ता रहता है तो इससे आत्मा में अव्यवत मरण अविनाशी नहीं होना और जिसके अवैव होते हैं उसे त्रिकार बकार रहत भी नहीं मान सकते। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अवैवहीन और नित्य है। वह कभी घटता बढ़ता नहीं। जैन मत बलम्बियों की उपयुग मानता निरर्थक है। मोक्ष काल में जीव का जो माप है उसकी नित्य स्थिति का जैनियों ने प्रतिपादन किया है, अर्थात वह एक सा रहना बताया है। इस पर आदि और मध्य की अवस्था वाला प्रणाम भी नित्य मान लिया गया। जो नित्य है वह घटता बढ़ता नहीं और उसे छोटी या बड़ी जैन योनियों से जाना होता है, उन सब के समान परिणाम ही रहता है। योनि के अनुसार माप में कोई विशेषता नहीं होती, इससे परस्पर विरोधी मानते होने से जैन धर्म की उपाध्यता सिद्ध नहीं होती। पशुपत के मत के कारण कार्य योग विधि और दुखांत ये पांच पदार्थ हैं। शैव सौर गणपत जैसा पशुपति संप्रदाय हैं। पशुपति मत के शेय मदराय कंट्री